जो थे स्तंभ इत्यादि, उनको कुछ प्रेरणा दी और प्रेरणा देने पर ये लोग, यहाँ सोमनाथ का मंदिर है क्या वो जगह
प्रभात,
वहीं पर ऋषि आश्रम लोग चातुर्मास्य व्रत मना रहे हैं, जिसमें नारद जी हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, कवि कवि इत्यादि हैं, बड़ी बड़ी संतों का समावेश हुआ। बड़े आनंद से उनका सत्र हरि कथा का जैसे यहाँ चल रहा है वहां तक चल रहा है। कुछ उदंत लड़के, उदंत था साम ये कृष्ण के तब बेटे हैं ना, इनमें नहीं हो सकते, किंतु योग माया को दिखलाना था। जैसे आजकल बहुत उदंत लड़के बंगाल में तो अत्यंत थे, साधु संतों को देख करके कहेंगे ये कौन है गुंडे जा रहे, लड़कियां तक भी छेड़ी उनको। अब धीरे धीरे, पहले यहां था कि साधु संतों को जय श्री राधे 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 करते थे, कोयल राधे राधे करते थे, चौकदार सब राधे राधे करते थे, सभी वातावरण राधे राधे करते थे। अब जमाना धीरे 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 अब पलट, अब हमारे बच्चे लोग नगर संकीर्तन में जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं मुलायम सिंह की जय, वो मुलायम सिंह की जय, वो मुलायम सिंह अजय ने कहा चले गए। अब लोग छेड़खानी करने लगे, अब राधे राधे नहीं करते, अब लोग मायावती या क्या क्या कहेंगे, माया देवी की जय हो माया देवी। तो इस तरह से जमाना पलट रहा है। इसको दिखलाने के लिए अपने पुत्रों के द्वारा ही उन्होंने दिखलाया, कृष्ण के जैसे अर्जुन परिक्रम है, ये अज्ञानी बनकर के कृष्ण से गीता का भाव सुनाना, ऐसे ही जैसे परीक्षित महाराज कृष्ण के परिकर हैं, वो मरणशील मनुष्य जैसे अपने करके श्रीमद् भागवत को श्रवण किया। लोग समझ नहीं पाए जी परीक्षित महाराज जी को, उसी तरह से शाम इत्यादि को एकत्र करके भेज दिया। वो दंड होकर के शाम को लड़की सजाया, बड़े सुंदर थे, बस लड़की सजा दिया, कुछ केस भी बड़े बड़े थे, उन्होंने केस को इससे ढक लिया और 16 श्रृंगार करके ले गए, पेट को थोड़ा सा ऊंचा बना दिया, ये गर्भवती है। जाकर के सब लड़के उदंत ऋषियों से बोले, महात्मा जी आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, जरा बतलाओ ये नई बेटी ब्याह करके आई है, इसको गर्भ है, तो आप बतलाइए इसको बेटा होगी कि बेटा बेटी होगी, हम लोग बड़े इसके लिए कौतूहल हैं। घर वाले भी बड़े असमंजस में, किसी ने कहा भी आज बेटी, किसी ने कहा बेटा हो, आप बतलाइए। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बार बार जब कहने लगे तुमको क्रोध हो, दो बार सारे सामने आ गए, अच्छा बेटा होगी कि बेटी होगी बतलाऊं, ये बेटा और बेटी नहीं, इसके पेट से मूसल निकलेगा और ऐसा तैसा नहीं मूसल, तुम्हारे जंतुओं को भंग करके बराबर कर देगा, ऐसा होगा, जाओ। काने के साथ ही मूसल गए, जाकर के जल्दी से गए और थोड़ी देर जाकर के शाम को, और शाम के मुंह में हवाई उड़ने लगते और उनके साथियों के भी, उन्होंने कहा जैसे भाई पेट खोलो जल्दी से, और कपड़े खोला उसके ऊपर में तवा बांध करके रखा था, यहाँ कपड़े नीचे करके और तवा को जहीं हटाया नीचे से एक मूसल इतना बड़ा गिर गया। मूसल आप लोग जानती हैं कि नहीं, आजकल तो मूसल टूसल सब गया है, क्योंकि क्यों चला गया,
मूसल गया, मिक्सी हो गया,
आजकल स्त्रियाँ छाँटती नहीं है, तो बस मैथिल खरीद लिया है या चक्की पर आटा दे आएंगे, बस हो गया, ब्लड प्रेशर से मर गई, ताकि परिश्रम करती थी, कोई रोग नहीं आता। तो ये मूसल भी नहीं जानते, मूसल होता है बहुत लंबा, कर तीन हाथ चार हाथ का, वो होता है बबल के लकड़ी का, बहुत मजबूत और लोहे का, उसमें काम कर उसे दाल चावल गेहूं और सब चीजें कुक करके रसोई के लिए उपयुक्त बना करके आँच से छिलके अलग कर दिए जाते, बस वो इतना सा मूसल और उसमें लोहा लगा हुआ निकल करके गिर पड़ा और डर गए, ये तो सत्य कहा है। बस उग्रसेन महाराज के यहाँ गए, उग्रसेन महाराज अरे तूने क्या किया, कृष्ण से मत कहना, ये तो बड़ा तुमने गड़बड़ किया है, अब तो हमारा भंग होने वाला है। मुसल्ला कुशल लेकर अपने नौकरों को हुक्म दिया अच्छी तरह से इसको जला दो। मुसल उन्होंने आग जला करके और उसको जला दिया, रात को एकत्रित कर लिया और आ गया लोहा, लोहा को खिंचवाया तो घिसते 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 कितना आकार आ गया जो हाथ में नहीं आया और टिकड़ी की बन गई, इधर से खींचा उधर से खींचा और वो तीन कोना एक छोटा सा पतला सा एक लोहा बच और वो हाथ में पकड़ में नहीं आता। उन्होंने कहा जिसकी खिलाओ लेकर के नदी में समुद्र में एक नौका में बैठा करके रात और ग्रोह का चिन्ह लेकर के समुद्र किसी का उद्धार नहीं लेता है तो लिया उसने जितना जो कुछ था बाहर में फेंक दिया किनारे लग गया और उधर में लोहे को एक मछली ने खा। अब वो सकंडा ऐसा बना लोहे से भी अधिक रुखड़ा काटने वाला थी और इधर में वो मछली पकड़ी गई एक बहेलिए ने पाया और बहेलिए ने उसमें लगा दिया अपने सर में लगा दिया। कृष्ण देखा जैसे ये तो द्वारका में बड़ा उत्पात मच रहा है, बादल नहीं है बालो बर्फ है, कौवे काव काव कर रहे हैं, कुत्ते रात में रोते हैं एक साथ मंडली बांध करके, जब अनिष्ट होना होता तो ऐसा ही होता है। उस समय में गाय रोने लग जाए मूर्तियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं जबकि अनिष्ट होना हो तो ऐसे सब देखे जाने लगते। उस समय में कृष्ण ने कहा कि सब लोग चलो हम वहां पर जाएंगे कौन सी प्रभात और वहीं पर दान पुण्य करेंगे और ठाकुर जी की संपत्ति के लिए आराधना करेंगे, समान अनिष्टों के मूल में वही हैं इसलिए उनसे हम प्रार्थना करें। वहां पर गए समुद्र में स्नान किया बहुत दान इत्यादि सब लोगों ने दिया। देने के बाद में थोड़ी सी बुराई होती है मदिरा पान किया मैरी और इसके बाद में कृष्ण तो अलग होकर के चले गए, बलदेव प्रभु जी आगे ही चले गए और वो जाकर के पेड़ के नीचे विचार कर रहे हैं। और उसी समय में उद्धव मैत्रेय को उन्होंने श्रीमद भागवत की कथा सुनाई और इधर में बैठे थे बहेलिए ने पहले तो वो कंडे में लड़ कट करके जीतने थे और कृष्ण वहां पर थे उनको बहेलिए ने बाण मारा उनको लगा और वो यहां पर ये बात एक है न तो ये युद्ध हुआ न तो कृष्ण को बाण लगा न तो कोई किसी से लड़ा, सब लोग अपने गुरु धाम में या जहां जहां से जो भगवान के परिकर आए थे वो भगवान के परिकर थे अपने अपने लोगों को सशरीर ही चले गए। किंतु यह रहस्य लोगों को मालूम नहीं पड़ा कैसे किसी को दिखला है टीकाकार ने दिखा या भागवत में दिखा, साधारण मनुष्यों ने देखा कि भाई कृष्ण को बांध लगा घायल हो गए और अंत में शरीर छोड़ दिया। जो मध्यम प्रति के लोग थे देवताओं ने देखा कि कोई एक तेज निकल करके आकाश मार्ग में जा रहा और जो सिद्ध महात्मा थे ब्रह्मा शंकर और ऋषि नारद इत्यादि कृष्ण सरी इन परिकरों के साथ में वो लोग वृंदावन में जा रहे उन लोगों ने ठीक देखा, पीठ वाले लोगों ने एक आभास की ज्योति सी देखी और साधारण लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा, उन्होंने लगा ये सिर लगा इन लोगों में लाड़कट मार पीठ हुई और उन्होंने ये बतलाया कि देखो एक राजा उसकी रानी थी उसके बच्चे थे, एक दिन एक नर खेल तमाशा देने के दिखलाने के लिए अपनी स्त्री और दो बच्चों के साथ में उसकी राजधानी में आया। राज दरबार में कहा गया बोले ये प्रभु आप आदेश दीजिए आपको खूब सुंदर सी खेल दिखलाए और जहां दिखलाओ। उसने दो बांस को गाड़ दिया और उस पर रस्सी टांग दी, दोनों तरफ में खूटे गाड़ करके उस रस्सी को उसके ऊपर में रख दिया और वह स्वयं ढोलक बजाने लगा। अब उसकी स्त्री सिर पर एक घड़ा, उस घड़े के ऊपर में एक और घड़ा, उसके ऊपर में एक और घड़ा लेकर के झट झट न जाने कैसे उसी रस्सी पर से उसके ऊपर में पहुंच गई। हाथ में एक डंडा ले लिया और उसी पर लिप्त करते हुए कभी उधर से उधर जाती है और उधर से इधर आती है, गिरती नहीं और न घड़े गिरते हैं। देखकर के ताली बज गई और सब लोग वाह वाह करने लगे। रानी ने अपना एक सुंदर सोने का नौलखा हार निकाल करके उसको जब आई नटी नटी के गले में पहना। पलाने के साथ उससे दोनों लड़के 8 और 9 वर्ष के थे, बड़े सुंदर स्वस्थ। वो दोनों आए, मैया हमें दे, मैया हमें दे, छीनने लगे। मैया ने गले से निकाल लिया और छोड़ दिया हाल। अब वो अपनी तरफ में जब देखा जैसे ये नहीं दे रहा और वो नहीं दे रहा है, दोनों बलवान बराबर के हैं बच्चे, कोई किसी से छीन नहीं पाता, तो दोनों ने एक साथ में अपनी म्यान से तलवार फेंक ली और उसने एक साथ में ऐसा तलवार मारा दोनों के गले, उसने उसको काट दिया, इसने था और दोनों फिर रुंडमंड गिर गए। नतीजा हाय ये क्या हो गया, हमारे बच्चे मारे गए। दौड़ती ही आई और एक बच्चे की तलवार लेकर के अपना गला काट। इसमें पति ने देखा, अरे ये क्या हुआ, हमारी स्त्री भी मरी, बच्चे भी मरे और मैं अकेले आ रहा करके क्या करूं। दौड़ता हुआ है एक बच्चे का वो तलवार उठाया और अपना भी गला काट करके वो भी खड़ा। वहां पर एक धम्मासन छा गया, हाय हाय ये क्या हो गया। यहाँ पर सुंदर खेल चल रहा था, सब ताली बजा रहे थे और यहाँ पर ये तमाशा हो गया। बड़े दुखी हो गए, थोड़ी देर के बाद में उसको फेंकवा दिया। इसके बाद में बड़े दुखी थे। 2 दिन के बाद में राजा के पास में, रानी के पास में एक लेटर आया, महारानी जी आपने पहला खेल देकर के हमको तो आपने 9 लक्खा हार दिया वो मुझे मिल गया, किंतु अंतिम जो खेल दिखलाई हम लोगों ने आपने कुछ उपहार नहीं दिया, न हमारे बेटे मरे, न हम मरे, न हमारे पति, हम लोग खूब राजी खुशी हैं, अब इस खेल का कुछ पुरस्कार चाहिए। आपको यदि विश्वास न हो तो हमारा घर का ये ठिकाना है, आपके राज्य के पास ही में रहती हैं, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। राजा रानी बड़े प्रसन्न भए और उन्होंने रथ पर चढ़ करके ये देखने के लिए सत्य बात है कि दूत वहां पर गए, देखा कि मुस्कुराते ही वो नदी अपने बच्चों को और पति को लेकर के रानी को फूलों का गजरा लेकर के स्वागत करने के लिए खड़ी है और कहे कि हमारा पुरस्कार कहाँ है रानी साहिबा। ये देख के आश्चर्यचकित हो, यदि यह नट एक ऐसा कर सकता है तो जो नटों का भी नटों का मूल नट है कृष्ण है, वो नहीं दिखला सकते माया से, नहीं दिखला सकते, वो तो नटवर है ना, उस माया के मालिक हैं, जादू मंत्रों के भी मालिक हैं। अभी मथुरा में भी कुछ दिन पहले यही डेंसियर्स में जहाँ पर किसी चाट बाजार बना है वहीं पर कलकत्ते के वो जादू वाले कोई आया था, वो तो वो आकर के दिखला रहा था, दिखलाया क्या, एक बड़ा भारी लोहे का संदूक रखा और उसने ताला 8-10 बड़े बड़े आए, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ के SP और सब लोग आए हुए थे। उसने अपने बच्चे को सुला दिया और तलवार निकाली या छुरी और चाकू निकाल करके उसका गला काट दिया, देखते देखते कपड़े के अंदर रख करके, सभी ये क्या कर रहा। वो एकदम बेपरवाह गला ही काट दिया और ऐसे ऐसे होने लगा, मरा। इसके बाद में सब लोग समझिए गला काट दिया और गला को निकाल करके अलग से और बक्से में बंद कर दिया लोहे के। मजिस्ट्रेट के कहा जिसे आप ताला बंद कीजिए और चाबी अपने पास रखिए, 1 में 4-5 ताले लगवा दिए बड़े बड़े। लगाने के बाद में अब लोग कहेंगे अब क्या करता है, उन्होंने कहा कि अरे बेटा जरा आना तो बेटा आ जाना तो जब पिताजी मैं आ गया ये करते हुए करते लोग। यदि ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा और वो कितनी जादू की बातें हैं, कितना कौन एक जादूगर सामान्य अपने रोजी के लिए ऐसा कर सकता है तो ये प्रभु नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण को कोई नहीं मार सकता। कर्ण का बाण, जिनको भीष्म का बाण, जिसको काली नगर नाक के एकदम बीच का कुछ बीच जिसको यहाँ यहाँ चारों तरफ पर काटा और उसमें डूब गए और नहीं मरे, जिन्होंने आपको खा लिया नहीं मरे, जिन्होंने गोवर्धन को धारण किया और नहीं मरे दब करके, जो कि जमपुर में चले गए समुद्र को पार करके और तमाम अंधकार और पृथ्वी को और आठ आवरणों को पार करके महाकल जमपुरी में जा करके जिसका कुछ बचा हुआ नहीं था, हार भी नहीं था, और उसको वहां से लेकर के अपने गुरु जी को, वो अपनी गुरु मैया को दे दिया। आपने सुना जिन्होंने उनके देवकी के छह पुत्रों को कितना दिन हो गया है और उनको फिर से बुला करके देवकी का दूध पान कराया और फिर कोई कृष्ण का जिंसा होने की वजह से उन लोगों को जमीन स्पर्श किया तो ही मुक्त होकर के चले गए। ऐसे कृष्ण को कोई मार सकता है? ऐसे कृष्ण को परिकरों को कोई मार सकता है? इसलिए कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो योग माया के द्वारा होती हैं, जिनकी हम लोग कुछ समझ नहीं सकते कि इसलिए कैसे लीला कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण की अंतर ध्यान लीला को इसी रूप में समझेंगे। वहां पर कोई युद्ध मारकाट नहीं हुआ, वो तो भेलकी बाजी थी, उन्होंने ऐसा दिखला दिया और सब परिकर सहित में वहां चले गए। इसी तरह से बहुत सी लीलाएं हैं, समय के अनुसार में वर्णन करूंगा। हमारे लिए कुछ निषेधाज्ञा भी है कि अधिक मत बोलिए, तो उस निषेधाज्ञा को भी मैं दूर करते हुए थोड़ा सा बोला। अब शायद 10 बज गया है, समय भी हो गया है। आज शाम को आप लोग 5 बजे आ जाएंगे, जैसे 5 से 6 बजे तक हमारी कथा अच्छी तरह से चलते रहे। ये हम इस कथा को समाप्त करके थोड़ी सी कथा रखेंगे कल के लिए, सवेरे के लिए। आज हम लोग 6 बजे करीब हम यहाँ से रथ यात्रा कृष्ण बलदेव और जगन्नाथ जी को लेकर के यहाँ से सीधे होली गेट में भीतर जाते हुए, वहाँ से विश्राम घाट और यमुना के घाटों से होते हुए आज समाज रूप से परिक्रमा करते 8 बजे के पहले ही आने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर प्रसाद लेकर के तब फिर अपने घर में जाएंगे और कल फिर हम लोग जैसे रोज होता है 7 बजे से जैसे आरंभ होता है वैसे ही भागवत आरंभ होगी। उसका कुछ जो बाकी रहेगा और शिष्ट करके पूरा करके और तब यहाँ पर हम लोग हवन इत्यादि कार्य करेंगे। हवन इत्यादि का कार्य होने के बाद में सब अपनी भागवत की ये हम करेंगे, आरती उतारेंगे, इनकी पुष्पांजलि देंगे और ये भागवत जी हमारे हृदय में रहे सदा के लिए इसकी प्रार्थना करेंगे। और तब हम लोग कुछ प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और प्रसाद को थोड़ा बहुत ले करके आप लोग तब फिर अपने घरों में जाएंगे और सदा के लिए इस भागवत को अपने हृदय में रखेंगे। हम लोग जहाँ तक चेष्टा करते हैं कि आजकल कथाओं में भी सार नहीं, ऐसी हमारी कथा न हो, पैसे का कोई प्रश्न न रहे, पैसों के लिए भागवत को बेच देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग तो चाहते हैं आपका हृदय ये पुष्पांजलि के रूप में लेकर राधा कृष्ण के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर दें। आप लोग ऐसा ही तैयार होकर के यही पुष्प लेकर के आएंगे जो आज से हम लोग राधा कृष्ण की हो गई या हो गया। भजन करते हैं या कृष्ण के जो अवतार हैं राम इत्यादि हैं उनका भजन करना भी कृष्ण का ही है, किंतु फिर भी कृष्ण की लीला का कुछ वैशिष्ट्य है। अभी तक हम लोगों ने इसका वर्णन किया, आप लोग इस चीज को हृदय में रख करके यही पुष्पांजलि ले आएंगे और कृष्ण के चरणों में, ये भागवत स्वयं कृष्ण हैं, यहाँ पर गिरिराज जी भी हैं, आप उनके चरण में पुष्पांजलि देकर के हमारा यह भागवत कथा का द्वादश इनका सत्र समाप्त होगा। गौ प्रणामे
सत्यमूर्ति ब्रह्मूर्ति के उपाय करू नाम संकीर्तन को दिखाया कि सत्यनाम उद्धार होने के लिए एकमात्र हरे रावण के इस प्रकार वर्णन करते हुए चतुर्थ की भागवत आदि का वर्णन तृतीय स्कंद में सृष्टि तत्व का वर्णन करते हुए कपिल देव ने संवाद दिखाया जिसमें संसार की सृष्टि रचना को दिखाते हुए उससे भगवान के चरणों में भक्ति चतुर्थ स्कंद में धर्म अर्थ काम मुक्ति का वर्णन करते हुए पुरंजन उपाख्यान के द्वारा नवरत्न मार्ग की ओर ले गए। पंचम स्कंद में स्थान विश्व ब्रह्मांड के जितने भी स्थान हैं भगवान का दिव्य लोक है उन समस्त लोगों का वर्णन करते हुए अप्राकृत धाम प्राकृत जल धाम के प्राकृत वैभव धामों में अपने विराजमान करते हुए सबकी रक्षा करते भक्त चरित्र में भरत महाराज के उपाख्यान के द्वारा भवा कवि इस संसार का चित्रण खींचते हुए उससे एक और वैराग्य गुरुवाणी के चरणों में भक्ति इस प्रकार से पंचम स्कंद में वर्णन हुआ। छठवें स्कंद में पूर्ण गुरुवान अपने नामों के द्वारा समस्त विश्व जगत के प्राणियों की रक्षा करते हैं। अजामी उपाख्यान के द्वारा दिखाया जो हम सब की जो धारणा होती है संसार में हमारे रक्षक कितने हैं, परंतु कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। समस्त ये गलते से सूर्य विकृति से जब कोई रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे अजामिल को कोई रक्षा नहीं करने पाया। और भगवान नाम जो कि अजामिल सारी गलतियों को करते हुए पाप कर्म कर्म करते हुए एक दूसरे के लिए किया तो उससे भगवान ने उसकी रक्षा की। इस प्रकार भगवान कैसे दयालु हैं, कैसे रक्षक हैं, ये समझकर नाम की महिमाओं को दिखाया। उपाध्यान के द्वारा भी एक असुर कुल में जन्म लेकर के कैसे उनके अंदर भावना प्रेम गोपियों का ये गोपी भाव का ये निराशन समारोह का एक विशेष लक्षण के रूप में दिखाया गया। सप्तम स्कंद में महतों के अनुग्रह से असुर कुल में जन्म लेकर के भी प्रहलाद महाराज कैसे महाभद्र कर रहे हैं और वैकुंठ के द्वार पर जय दिया असुर कुल में कैसे नीचे उतर आते हैं। ऐसे कर्मों की जो मुख्यावश गति है महत्व का परम अनुग्रह ये समस्त दिखाया गया। महत अनुग्रह उसी कर्म वार्थना को दिखाया। अष्टम स्कंद में भगवान मनुष्यावतार के रूप में कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, जिस दानवों के विवाद को समापन करते हुए बलि महाराज को अपनाया इस प्रकार उनकी भक्ति एक मंत्र देखा है। नवम स्कंद में सूर्य वंश चंद्र वंश के द्वारा जिस वंश को भगवान ने अंगीकार किया है ऐसे उनके वंशावली कीर्तन किया है। उन वंशों के राजा महाराजाओं का महान पावन चरित्र वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नवम स्कंद विज्ञान और वैराग्य की बात की बदलाव है। दसम स्कंद जो समस्त भक्तों के लिए मात्र आश्रय है दसमे दसमम लक्षम आस्तम आश्रय विग्रह श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगत धाम नमाम कृष्ण श्री कृष्ण के उन्हार रिंद जो समस्त भक्त जनों का आश्रय है ऐसी दसम स्कंद की कृष्ण की लीला कथाएं जो 125 वर्ष पर इस जगत में धरती में गुरुवर ने अपने लीलाओं को प्रकट किए हैं ऐसे लीला आस्वादन करना है समस्त भक्त जनों का एकमात्र आश्रय है यही कर सकते हैं। इस प्रकार ग्यारहवें स्कंद में कृष्ण लीलावत का कैसे आस्वादन हो इस जीवन को कैसे भक्तिमय भावमय बनाया जाए तो मेरी नवजीवेंद्र संवाद के द्वारा कृष्ण उद्धव संवाद में इस समस्त कथानक को प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन को भागवतमय बनाए और उसी प्रकार अपने जीवन को ढाल दें भगवान की भक्ति में डूब जाए और डूबते हुए प्रभु के लीला कथाओं का स्मरण करते हुए अस्त्र कंप फूल के रोमांच परिवार अस्त्र साथी भाव का बुलाए उनके चरणों में प्रेम उदय हो उस सबको दिखाया कि गोथे उद्धव श्रुतियों में शास्त्रों में विधि विशेष मेरे द्वारा कहे गए धर्म अधर्म ये सब को तुम परित्याग करो एक मात्र गोपियों के भाव में डूब कर सर्वात्मो भावे न जाहि शरणम समुद्र प्रकार से गोपियों के चरणों में शरण लो और उनके भाव में डूब जाओ यही जीवन का स्थान है। इस प्रकार के कारण चंद्र में अंत में उपसंहार करते हुए कहा हे उद्धव जो भक्त सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं मेरा भजन करते करते एकांत रूप से जब सर्वस्व समर्पण कर देते हैं तो मैं भी उनको अपना लेता हूँ एक एक इस शरीर से छुड़ा कर मैं शुद्ध आत्म स्वरूप से मैं अपने पास ले लेता हूँ उसको अपना परिकर बनाकर उनके प्रेम रस सेवा को मैं ग्रहण करता हूँ प्रेम रस के आस्वादक बनाता हूँ इससे देव भाजन करता हूँ। ऐसे ऐसे कहते कि राजस्कंद में प्रलय का वर्णन किया, संसार का प्रलय होता है, उस प्रलय के बीच में सभी युग में कैसे काल के द्वारा प्रभावित होकर मनुष्य भटकते हैं। भटकते हुए मनुष्य आज के युग में सावधान हो गया और भगवान के नामों का कीर्तन करें, करते करते इस संसार को पार हो जाए चलेगा। इस प्रकार श्री सुर गोस्वामी जी कहते हैं, समस्त शास्त्रों का सार है अंतिम और भागवत, क्योंकि निष्काम विशुद्ध प्रेम का वर्णन करते हैं। भागवतम पुरा अमलम जद वैष्णवानं प्रियं जस्मिन् पारमहंसमेकमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानव्याज भक्ति नैष्कर्म परिष्कृतम् सुपथं विचारो परो भक्त्या
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रसन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरगस्तिके गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रव्रजं तमनुते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्यारिभाव सुप्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां श्रीमद्भागवत की कथा संपन्न हुई निर्देश रूप से। हम इसके संबंध में दो एक बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भागवत समाप्त होने पर जबकि सुखदेव गोस्वामी वहां से प्रस्थान कर गए और उनको जो कुछ निर्देश देना था उन्होंने दे दिया, तब परीक्षित महाराज जी मौन हो गए और कृष्ण चिंता में लवलीन होने वाले थे। इसमें भी उनकी मैया ने कहा, उत्तरा जी ने, बेटा मैं पिछली जाती हूँ, मेरे दुख भी बहुत कम है, सुना तो जरूर किंतु मैं पूरी बात को नहीं समझ सकती, इसलिए संक्षेप में इसका सार हमको पुनः सुना। उस समय में वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि मौन की अपेक्षा समाधि के अपेक्षा कृष्ण लीला का स्मरण करना और उत्तम है, इसलिए वो भगवत चिंतन छोड़ करके अपनी मैया को जो उस समय में सार ने श्रीमद्भागवत का जब सार समझाया उसी को बृहद भगवतामृत कहते हैं। हमने उसका यहाँ पर एक वर्ष में यहाँ पर हमने उसका पाठ किया, बल्कि दो बार किया, अभी थोड़ा सा बाकी है, उसको फिर से हमने आरंभ किया है, उसको कहते हैं भक्ति रसायन। इस प्रकार से सुनाने के बाद भी मैं इधर सुन रहे थे और कितने में इधर किया होता है, कली वहां से चला सब जो जिसको उनको प्रार्थना था, जब भी वो चला तो उसने काले ब्राह्मण का रूप बना दिया और उसका नाम उसी समय में एक कश्यप नाम का औषधि किसान निर्देश जिसको कहते हैं दोस्तों
धनवंतरी
कश्यप उनका नाम था, उनका नहीं उपाधि है धनवंतरी। वो वहां से चले, आज परीक्षित महाराज जी के सभा में जाएंगे और परीक्षित को सख्त काटेगा और मैं उनको बचा लूंगा। पूरी तैयारी जड़ी बूटियों के साथ में मंत्रों के साथ में वहां पर चले, इतने में वो काला मुस्तंड कली वो सर्प का रूप धारण करके उनके पास में आया, वो भी ब्राह्मण का ही रूप धारण करके उनके पास में आया। बोला जी आप कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? मैं जा रहा हूँ परीक्षित के, इसलिए वहाँ पर सांप काटेगा उनको और मैं उनको जीवित कर दूंगा। अरे आप नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ तीन बार कहता हूँ आप मुझे बचा सकते। उन्होंने मैं तीन बार कहता हूँ कि बचा लूंगा। अच्छा तो मैं ये बरगद का एक बड़ा विशाल पेड़ है, मैं उसको काटता हूँ तुम तो उसको बचा दो। अच्छा ठीक है काटो, बस अपने पूरे पेट के साथ में, पूरे बीज के साथ में और उसके जड़ में एक ऐसा इसको बल मार, और मारते ही क्षण मात्र में वो पेड़ एकदम सूख करके जल करके खाक हो गया, उसकी जड़ भी जल गई। उनके तरफ में देखा वैद्य की तरफ में, और उन्होंने कश्य जी ने अपनी थैली से निकाला जड़ी बूटियों को और पीस करके और मंत्र के साथ में अपने हाथों में वो लेकर के तरल पदार्थ उसकी जड़ में फेंक दिया, और जड़ में फेंकते ही उसमें से नई कोमल निकली, बरगद का पूरा विशाल वृक्ष हो गया और फिर जैसा था वैसा ही हो गया। कहा जाए ये तो बचा लेगा, अब क्या किया जाए? ऋषि ने, ऋषि के लड़के ने साफ किया जरूर सक्षम डांटेगा और मरेगा तो ये बात तो मिथ्या हो जाएगी। उन्होंने सोने के थाल में अशक्तियों से भरी हुई उनके सामने लेकर के रख दिया। अरे जा रहे हो वहां से तो रुपये ही तो मिलेंगे, तो मैं भी तुमको रुपया दे रहा हूँ, ये सोने अशक्तियों से ये तो ले जाओ। उन्होंने उसको क्या कहते लूं की न लू, इतने दूसरी थाल उनके सामने रख दिया, मुख से पानी निकल आया और लोग को नहीं संभाल कर सके और कहा उन्होंने समट लिया और वहीं से वो लौट करके चले। सब इसके बाद वहां पर पहुंचा और एक माला में छोटी सी एक कोई ऐसा होकर के उसने प्रवेश किया जो उनको परीक्षित महाराज जी के गले में देनी, और इसी के पहले उन्होंने कृष्ण को में और राधा जी के चरणों में अपना चित्त लगा दिया, शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लिया, ब्रह्मांड में ले आए और ब्रह्मांड से निकाल करके राधा कृष्ण के चरणों में ब्रज में उन्होंने लगा, उनका शरीर एकदम सूख करके वो एकदम काटा हो गया। इसके बाद में उसी स्थिति में लोगों ने समझा जब परीक्षित महाराज आए कि उन्होंने शरीर को पहले ही छोड़ दिया और कृष्ण के चरणों में वो चले गए। इसके बाद में तक माला में प्रवेश करके वहां पर आया और फिर तक्ष का रूप धारण करके सब लोगों के सामने उस शरीर को जो मरा हुआ था उसमें दसा और वो एक क्षण मात्र में जल करके खत्म हो गया। लोगों ने समझा कि परिस्थिति को काटा किंतु काटा किसको? उस मट्टी को काटा, उसको स्पष्ट नहीं कर सकता। यदि प्रहलाद महाराज जी को मीराबाई को एक चीज कुछ नहीं कर सकता तो इनको परिस्थित महाराज जी को जो सात दिन तक भागवत की कथा सुनी जिसको सुन करके और सब लोग विमान के सहित में बैकुंठ में चले गए ये मर जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज जी की मृत्यु नहीं हुई, वो तो कृष्ण के परिकर थे, वो भागवत को इस जगत में प्रकाश करना था इसलिए उन्होंने ऐसा प्रकाश किया और लीला संवरण किया, इसलिए वो मरे नहीं, आज भी वो अमर है। इसलिए जो भगवान की कथा सुनता है सभी अजर अमर नित्य शाश्वत और सुखी, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप लोग भी कभी मरेंगे नहीं, आप लोग भी कभी मरेंगे नहीं। जो भागवत की कथा यदि सब सच में सुना है और इस कान से इस कान में निकाल नहीं दिया जरूर कभी नहीं मर सकता। दूसरी बात, एक चीज का स्मरण होता है महिलाओं की संख्या देखकर के, पुरुष लोगों को थकेलते थकेलते महिलाओं की भक्त महिलाओं की भीड़ ने उनको एक कोने में फंस दिया, वो इधर एक कोने में रह गए, थोड़े से केवल हैं, केवल महिलाओं भक्त महिलाओं का यहाँ देख करके उनको याद आता है। कृष्ण जी जगत में आविर्भूत हुए थे किस लिए? जदा जदा ही धर्म अक्सर गुलामी भाव की भारत धर्म की संस्थापना करने के लिए और असुरों को मार करके पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। महाभारत युद्ध में कितने अठौनी लोग मरे?
18।
इनमें एक महिला मरी क्या? कोई महिला मरी थी? न पुरुष मरे, और कालजवन के युद्ध में जरासंध के आक्रमण में 18 बार में युद्ध में कोई एक महिला मरी? मरा कौन?
पुरुष लोग मरे
तो ये पृथ्वी का भार कौन था? पुरुष रूप में कल्पना जो कि भगवान का पता नहीं सुनते हैं। इतनी सस्ती हरी कथाइयां हो रही है, महिलाओं महिलाएं आ रही हैं, अभी पुरुष लोग हैं किंतु बहुत संख्या में कम। कथा का आयोजन भी महिलाओं ने ही किया, पुरुष हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप में वही है मूल उद्योगता। हमारी प्यारी देवी क्या है?
विमला संधि,
विमला देवी। और इनके संबंध से इनके जीजा जी और इनकी बहन बहन और इनके संपर्क से और सभी सभी लोगों का सहयोग है, इनकी लोगों का नहीं है। इसे पुरुष महिलाएं जो यहाँ एकत्रित है सभी का, किंतु महिलाओं का ये देखता हूँ। कृष्ण लीला थी, असुरों का तो संहार किया, और दूसरा एक और कारण था आने का, क्या? वो रसिक से खड़ा रस आस्वादन करना होता है। जसुदा जी से बात्सल्य और नंद बाबा से बात्सल्य किया, किंतु नंद बाबा के बात्सल्य से जसुदा जी जो महिला है भक्त है ना, उनका प्यार कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है, वजन नहीं किया जा सकता। और कृष्ण के सखा लोग हैं सुदाम मधुमंगल सिदाम इत्यादि, और इधर में कृष्ण की सखियां हैं ललिता विशाखा इत्यादि से। सखा लोग कृष्ण की बहुत सेवा करते हैं, और उन्हें सर्वोत्तम सखाओं की सेवा क्या है? किसी को यदि ब्रज में गोपियों को मनाने के लिए भेज दिया तो कभी गोपी को कहा तुम जाओ सखा को मना लाओ? इसलिए सखाओं से भी गोपियों का प्रेम का महत्व बढ़ता है। इसलिए कृष्ण रस आस्वादन करने के लिए जो आए, सखाओं के साथ में रास नहीं हुआ, सखाओं के पास में भ्रमर गीत नहीं हुआ, भ्रमर बन करके नहीं गए। किनके लिए आए भ्रमर बन करके? किनको मनाया? स्मर बरल खंडनम मम श्रीरति मंडनम देवी पद पौलम उदाह। ये किसको कह रहे हैं? किसी को और किसी को? इन गोपियों के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवत जो है ये राधिका के लिए किया गया, कृष्ण का राधिका के प्रति जो भाव है जो किसी भी शास्त्र में नहीं वर्णन किया गया उसका ही श्रीमद्भागवत में उन्होंने वर्णन। कोई कोई कहते हैं राधिका जी का नाम ही नहीं है, अरे मूर्खो अंधो राधिका जी का नाम नहीं है। अच्छा बतलाओ, मैं नाम नहीं दूंगा किंतु आप जितने हैं ना आप नाम देखे भी अपने आप समझ जाए। एक लड़का था बड़ा सांवला था, हाथ में मुरली लिए हुए है और यहाँ पर पीताम्बर है, त्रिभंग रूप में खड़े होकर के बड़े सुंदर से राधे राधे बंसी में बजाता है। ये कौन है? कहने की जरूरत, गुलाम बनाने की जरूरत है? एक सांवला सलूना पीताम्बर धारण किए हुए अपने हाथों में बंसी रखे हुए इस गोवर्धन को धारण कर लिया, ये बतलाओ तो कौन है गोवर्धन को धारण करने वाला? ये नाम बतलाने की जरूरत है? उसी तरह से रात हो रही थी और एक गोपी अंतर ध्यान होकर के चली गई और कृष्ण ने रात बंद कर दिया, उसको खोजने के लिए ढूंढने के लिए चले, इसका नाम क्या है ये बतलाने की जरूरत है? इसलिए ये तो संपूर्ण भागवत में आदि से लेकर के जितने भी ये 12 स्कंद है सब जगह राधा जी का गोपियों का नाम। दूसरी बात, उसमें 300 कितने कितने उसमें अध्याय हैं?
335।
अच्छा, वो समस्त अध्याय में राधा जी का नाम है। यही नहीं, मैं तो जानता हूं और हमने अपने गुरु वर्गों से सुना है ऐसा कोई श्लोक नहीं जिसमें राधा जी का नाम है। श्रीमद्भागवत का कोई एक श्लोक लाओ तो जिसमें राव नहीं लिखा हो, है कोई? देखो जा सके, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें राव नहीं आए, सरो से क्या होगा? राधिका, अरे आंखों राधिका जी का नाम नहीं है, उनके लीलाओं से तुम नहीं समझ रहे। आदि पहला ही श्लोक है, पहला ही श्लोक में जन्मादस्त अन्वय आदि करता जो अर्थ ऑफ दिग्गोसरा ब्रह्म विद्या आदि कवे मुह्यंती सूर्य तेजो भार निदान जत्र विनिमयो तिसर्गो अमृता धामना स्वयं सदा निरस्त उहुक सत्यम परम। इस राजकार्य के लिए नमस्कार। इसको नहीं समझने से ऐसे समझो निगम कल्प सरोगंतम मुखम सुखमुखाद अमृत द्रवसंयुतम पिवत भागवतम रसमालयम अरसकाय श्रीमद भागवत में। राधा जी को हटा दो भागवत से और रस निकालो तो निकलेगा कोई रस? राधा जी नहीं रहेंगी, शक्तियां नहीं रहेंगी। निकालो खूब रस, पानी किसी कोई रस नहीं। इसलिए आदि से अंत तक जहां पर कि समाप्त किया सत्यम परम धीमहि श्लोक इस बच्चे ने कहा उसमें मैं सत्यम परम धनी राधिका जी को अंत में नमस्कार किया। राधा जी का नाम नहीं है। प्रत्येक छत्र में प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक भाव में राधिका जी का नाम ओत प्रूफ है। उसमें समझने वाले समझेंगे, मूर्ख लोग नहीं इसको समझ। इस तरह से मेरी बात वो अधूरी रह गई। ये कृष्ण का आविर्भाव जो होता है, जो प्रकट होते हैं धर्म के संस्थापन के लिए, अस्त्रों का विनाश करने के लिए भूभार में, और धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा में भागवत में सबसे बड़ा धर्म क्या बतलाया गया? परो धर्मो जतो भक्ति अहेतुक अवदंबिता जा भक्ति। जितनी प्रकार की आराधना है श्रीमती राधिका जी आराधना की मुक्त विग्रह है, वो स्वयं ही आराधना है। इस श्लोक में उनका नाम स्पष्ट रूप में दिया गया है, ओम राधसा नमः, उसमें भी राधिका जी का नाम उसमें है। इस राधिका जी के शक्ति के प्रति प्रेम को स्थापन करने के लिए ये सब चीजें इसमें रमान नाभ। कितने श्लोक हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए इस गोपियों के प्रेम को दिखलाने के लिए ये श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ असल में ये। इसलिए प्राचीन काल से हम देखते हैं कि कृष्ण ने ये महाभारत युद्ध जो किया इसका मूल क्या कारण था? उनकी प्यारी एक द्रौपदी का अपमान किया गया और उस एक महिला के अपमान के लिए, वो कैसी परम भक्त कृष्ण थी, और उस महिला के अपमान के लिए कौरव दलों को और इन सब दलों का एकदम विनाश भंग कर दिया। एक सीता जी के लिए रामचंद्र जी ने किया समस्त रावण और असुरों को भंग कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर ऐसे ही ये सब महिलाएं अधिक संख्या में नहीं आई, पुरुष लोग धन बटोरने में बहुत लगे हुए हैं, राजनीति करने में लगे हुए, डकैती करने में लगे हुए। जितने डकैत देखिए दो एक को छोड़कर सब डकैत, मानसिंह इत्यादि सब डकैत कौन है? दाढ़ी और गोफ रखने वाले सब कालिका भयान, ये सब पृथ्वी के भाग स्वरूप हैं। आप लोग उसमें से नहीं होंगे, आप लोग देवता हैं जो उसमें से खन करके यहां पर बैठे हैं। मैं देखता हूं अभी कल कीर्तन हुआ ना, सब लोग मथुरा वाले करेंगे, जिनसे महिलाओं का दल इतना एकदम उम्र पड़ा और बड़े सुंदर रूप से कीर्तन किया, मेरी छाती खुल करके आनंद से बढ़ गई। ऐसे ही संख्या में बढ़ाओ तुम लोग, धर्म प्राचीन काल से ही तुम लोगों के हाथ में। तुम्हारे बच्चे हो धार्मिक हो, तुम्हारी बच्चियां हो धार्मिक हो, उनके भी लड़के हो धार्मिक हो, तुम लोग उनके आदि गुरु हो। इसलिए इसी मुख में तुम लोग चलना। मैं निराश हूं, अबला जाती हूं, मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हम तो देखते हैं कि पुरुष लोग ही अबल हो गए हैं। यहां पर देखिए समूह चले कोल इतने से, इसे आप लोगों को देख करके मुझे बहुत उत्साह होता है। आप लोग धर्म की रक्षा कर सकें, विशेष करके कली काल में पुरुष लोगों की है जाओ बहुत कम। यदि कहेंगे भागवत पाठ हम हमें कुछ दे दीजिए, नहीं देंगे सर। और महिलाओं के पास में, उनके पास में जो दो चार पैसे इधर उधर से उन्हीं से चोरी चमारी करके जैसे तैसे रखा है वो सब कुछ देंगे। कृष्ण को भी ऐसे ही किया। इसलिए मैं देखता हूं कि कलिकाल जितना बढ़ता जाता है ये धर्म भी कर्म भी सब आप लोगों महिलाओं के पास में सुरक्षित अब हो रहे हैं। पुरुष लोग तो भक्त ये वो चले जा रहे हैं तो राजनीति। आज देखिए तो कैसा मुलायम सिंह नकटिन सिंह और सब इनको देखिए, राजनीति धर्म नीति को छोड़ करके राजनीति काम नीति अर्थनीति लड़ाई झगड़े की नीति सब इसी में फंसे हुए हैं। वो कहेंगे बड़े लज्जा की बात है गौरी मठ में जाकर के महिलाओं के साथ हम लोग बैठने, ये तो हमारा बहुत ही दुर्भाग्य की बात। मैं कहता हूँ कि उनका दुर्भाग्य है कि ये कथा में नहीं आते, उनका दुर्भाग्य है। अब देखिए ना 14 लोगों में भी छिप करके आने वाली बहुत सी चौबाई होंगी, 14 लोग नहीं आएंगे। अरे हमें व्यापारी विद्वान सभा में कैसे जाऊं, हमारा नाम गड़बड़ हो जाए। वो लोग कहें हमारा तीर हेटा उस सभा में कैसे जाए, महिलाओं की सभा में, वो महिलाओं की सभा है कहेंगे। अरे यहाँ धर्म नहीं है वहां धर्म है ऐसा। इसलिए मैं आप लोगों को विशेष विशेष धन्यवाद देता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपने बल दें, ये आप लोग और बढ़े, खूब प्रचार कीजिए। अगली बार जब भागवत की कथा हो तो हमको ऊपर में एक और नाट्य मंदिर जैसा बनाना पड़े, हम लोग ऐसा बनाए और सब चलेंगे। अब जन्माष्टमी आ रही है ना, अभी से तैयार हो जाओ, एक एक महिला अपने साथ साथ में 10-10 महिलाओं को लेकर के आए। समस्त मथुरा मंच लोग बहुत कीर्तन करते हैं, हरी बोल हरी बोल राधे तो भागवत की कथा है। तो इसलिए आप लोग भी संकुचित और दमित मत होंगे, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनमें धर्म की कोई बात नहीं है, जो उनको पास समय नहीं है कुछ भागवत की कथा सुनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए समय, उन लोगों के लिए आप लोग भी उत्साह के साथ में भगवान का भजन करेंगे और